जरिए और पहाड़ी इलाकों में मैदानों में भी स्टिंग ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन और इसके अलावा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन और एयर पावर और इसके अलावा हर किस्म का जो असला है वो इस्तेमाल किया सिवाय एटम बम के। तो जाहिर है कि पाकिस्तान इस तजुर्बे से जो गुजरा है तो इसने इससे बहुत कुछ सीखा भी है और इसके अलावा बहुत कुछ ट्रेनिंग भी इसने हासिल की है। और सबसे बड़ी ट्रेनिंग दुनिया में वही होती है जब आप ऑन ग्राउंड फेस करके उससे आप सबक सीखते हैं और फिर उसको अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, टैक्टिक्स बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करा देते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान फाटक के इलाका में और इसके अलावा हमारा जो गिर का इलाका है और खुसूसन सवात का, इसमें इन्होंने काफी और बलूचिस्तान में तो ऐसे इलाकों में कि जमीनी भी है, पहाड़ी भी है, जंगल भी है और इसके अलावा एक ऐसे मुल्क से सरहद भी मिलता है जहाँ से कि दहशतगर्दी बहुत ज्यादा है और वहां से दहशतगर्दों को पनाहें भी मिलती है। और यहाँ पर भी हालात ऐसे हैं कि मतलब है कि कैजुअल्टीज और आईईडीज जो है, आईईडी सबसे बड़ा खतरा, सबसे ज्यादा जाने उसने दिया। और इसके अलावा खुदकश बम्बार, तो फ्रांस को तो ये पहला तजुर्बा हुआ है और मेरे ख्याल में कि वो कैरिकेचर वाले के बाद ये दूसरा वाकया था। तो जाहिर है कि पाकिस्तान का जो इस मामले में जो फील्ड एक्सपीरियंस है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इसलिए नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई प्रेसिडेंट फ्रांस के सदर के साथ तो उसमें ये बात और तजुर्बात की बुनियाद, वो तो खैर फौजी लिहाज से तजुर्बात शेयर कर सकते हैं लेकिन एक हमदर्दी का इजहार किया और प्लस ये किया कि हम भी इसका शिकार है। लेकिन ये बात है, फर्क जो दोनों में ये है कि हमारे मुल्क में बहुत बड़े वाकयात हो जाते हैं, बहुत बड़े बम ब्लास्ट जिसमें सैकड़ों लोग मर जाते हैं और कई जगहों पर कई शहरों में हो जाते हैं लेकिन हमारी सोसाइटी इस तरह है कि इसमें एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है और हालांकि फैसिलिटीज इतनी नहीं है लेकिन लोग इसको एक वो एक कुदरत की तरफ से एक अटल हकीकत समझ कर उसको तस्लीम कर लेते हैं और खौफ और हैरान होता है लेकिन उस लेवल का नहीं होता जिस तरह की यूरोप में होता है।
लेकिन क्या ब्रिगेडियर साहब यूरोप की तरह होना नहीं चाहिए क्योंकि
आज से भी मतलब है कि जो लोगों का मोराल है और लोगों का अपनी रोजाना की जिंदगी को बरकरार रखना है और प्लस इस किस्म के मतलब है कि स्टिंग ऑपरेशन करने हैं और इसमें किस किस्म के हालात नजर आते हैं और इनके खदोखाल क्या होते हैं तो उस पर पाकिस्तान मतलब अपने तजुर्बात फ्रांस से शेयर कर सकता है
जी। लेकिन आपने जो ब्रिगेडियर साहब दूसरा एंगल खासतौर पे शेयर किया है ना,
इसको जाहिर है कि बैन अल-अक़वामी तौर पर एक ऐसी तंजीम है जो कि हर जगह पर उस पर पाबंदी लगी हुई है लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ मुल्क उनको सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। और अभी जो रशिया और अमेरिका और टर्की का स्पेशली जो ये तजाद पैदा हुआ है और आपस में एक किस्म की कंफ्रंटेशन सी हो गई है तो उससे जो शाम के रिबल्स है उनको तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है और टर्की सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ पर दाइश है जिसके खिलाफ जो रूस है वो हमले करता है लेकिन साथ साथ उन अपोजिशन ग्रुप्स को भी मारता है।
यही वजह है ना कि वेस्ट की वेस्ट
एक ऐसी चीज है जो कि मेरे ख्याल में के खत्ते में गैर इस्तेहकाम लाएगा
और यही वजह है कि वेस्ट रूस के जो ऑपरेशन हैं उसकी मुखालफत भी इसी बुनियाद पे कर रहा है कि वो उनके बकौल रशियन के खासतौर पे जो बम्बार्टमेंट है उसका हदफ शाम के हिजब इख्तलाफ के या अपोजिशन जिसको मॉडरेट अपोजिशन कहते हैं वो भी टारगेट बन रहे हैं। कामरान बुखारी साहब से हमारा दोबारा रब्ता बहाल हुआ है। कामरान साहब, मैं ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू से जो एक सवाल निकलता है वो बाद में करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात के बावजूद पब्लिक ने जैसे उसके साथ चीजों को एडजस्ट कर लिया या रेजिलियंस है। रेजिलियंस को खैर एक दूसरा नाम लोग बेहिसी भी देते हैं, क्या ये सेंसिटिविटी वेस्ट की सतह पे उस लेवल पे होनी नहीं चाहिए जहां पे एक एक जान इतनी कीमती हो कि उसके फिर खिलाफ स्टेट एक्शन लेती नजर आए। लेकिन इससे पहले अगेन पहला सवाल, पाकिस्तान के तजुर्बात, वेस्ट को इससे पहले कितना एक्सपीरियंस रहा है दाइश की तर्ज की अस्क्रियत पसंदी से निमटने का? अगर हम देखें हमारे रीजन में, पाकिस्तान के रीजन में, वहाँ पाकिस्तान और श्रीलंका खास तौर पे इसका शिकार रहे हैं, अफगानिस्तान, और उन्होंने इसको काउंटर भी किया है, तो पाकिस्तान के तजुर्बात से किस तरह इस्तेफादा कर सकता है वेस्ट?
देखिए जी, चूंकि पाकिस्तान का जो है वो इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने कोई जो है ना 50-60-70 हजार جانے جو ہے نا گواہی ہیں, اور تقریباً 107 بلین کا جو ہے وہ اکنامک لاس,
اور تقریباً 80,000 جانے لوگ کہتے ہیں. اور اب
جی تو اس میں تو پھر یہ ہے کہ جس وہ تو چاہے جو ہے ایک جسے کہتے ہیں ایک دھبا ہے ہماری تاریخ کے اوپر, لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے مسلح افواج نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز, پولیس اور دیگر پیرا ملٹری فورسز نے اس کا پھر مقابلہ کیا ہے گزشتہ, میں یوں کہوں گا سن 2009 سے لے کے اب تک جو 5-6 سال گزرے ہیں, وہ تجربہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کارآمد ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ پاکستان کو جس لیول کا خطرہ تھا, لاحق تھا, وہ اس طرح کا اس لیول کا خطرہ جو ہے یورپی ممالک کو نہیں ہے. وہاں پہ سیلز چھوٹے ہیں, وہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ امپیونٹی کے ساتھ دہشت گرد گروپوں کو جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرنے میں جو ہے وہ اسپیس اور ٹائم کے مواقع نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جو پاکستان کے جو انٹیلیجنس اور جو پولیس کے تجربات ہیں ان سے شاید وہ مغربی ممالک بالخصوص فرانس اور دیگر جو بیلجیم ہیں جن کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر یاد رہے کہ اس اسکیل کا فرق ہے.
صحیح. اب آتے ہیں دوسری جانب, جیسے برگیڈر صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان کے اندر یا پاکستانی لوگوں نے چونکہ اتنے تواتر سے یہ واقعات ہوئے ہیں کہ اس کے ساتھ جیسے لگتا ہے کہ ایڈجسٹ بھی کیا ہے اور اپنے مورال کو ہائی رکھا ہے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی حساسیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ریاست اسی طرح مجبور ہو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ خاص طور پہ فرانس ایک حملے کے بعد جس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے, بعض لوگوں کے نزدیک وہ اوور پروپورشنیٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے. پاکستان کے اندر ہمیں وہ شدت بہت عرصے کے بعد نظر آئی, دہشت گردی کے خلاف جو ریزالو ہے وہ بڑے عرصے کے بعد نظر آیا, تو کیا اس بنیادوں پہ بھی پاکستان کو بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے مغرب سے؟
جی جی بالکل, بہت زیادہ, بلکہ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کو اور جو مسلمان دنیا کے ممالک ہیں ان کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں فعال ریاست, جمہوری اقدار, ایک جو ہے جسے کہتے ہیں بڑا ایکٹیو فعال پولیٹیکل کلچر, یہ سارے وہ انگریڈینٹس ہیں جس کی وجہ سے جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو بہت ہی اس کو ایک انہونی بات سمجھی جاتی ہے, اور پھر ریاست مجبور ہو جاتی ہے بغیر عوام کے کچھ کہے کہ وہ حرکت میں آ جائے اور وہ جو ہے پوری کوشش کرے کہ بھائی اس چیز کا کسی طریقے سے سدباب کیا جائے. ظاہر ہے اس میں اوور سٹیپنگ ہوتی ہے, مس کیلکولیشن ہوتا ہے, اوور ریئیکشن ہوتا ہے, لیکن ہمارے انٹیلیجنس کے کاروبار میں کہا جاتا ہے کہ جی بیٹر ٹو بی ایکسائٹیڈ, گیٹ ایکسائٹیڈ فرسٹ اینڈ دین کام ڈاؤن. تو اگر پہلے سے اگر آپ کام ہیں تو پھر یہ ہے کہ جس قسم کی آپ کو خطرہ لاحق ہے اس کا مقابلہ جو ہے پھر آپ صحیح طریقے سے کر نہیں سکتے.
برگیڈیئر سعید نذیر صاحب, پاکستان کو اگر بذات خود ہم انالائز کرنا چاہیں, ضرب عزب اس کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے, نیشنل ایکشن پلان اس کو بھی ایک ٹائم ہو چکا ہے, اس وقت اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ پاکستان کو جس لیول کے تھریٹس ہیں وہ کس لیول پہ ہیں, اور اگین داعش جیسی تنظیمیں جو دنیا کے مختلف حصوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں یا وہاں پہ بظاہر لگتا ہے کہ ان کے ایجنڈے میں کوئی ایکسپینشن آ رہی ہے, وہ پاکستان کو کس حد تک آپ کے خیال میں اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں؟
جہاں تک داعش کا تعلق ہے تو اس کا ایک تھریٹ تو موجود ہے, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, اور انہوں نے اپنا پراسان چپٹر جو کھولا ہوا ہے اس میں ظاہر ہے کہ افغانستان سائڈ پر تو نگران کا صوبہ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے, اور اس کے علاوہ باقی جگہوں پر ان کے کافی فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں. البتہ پاکستان کے دو چیک پوسٹوں پر بھی انہوں نے حملے کیے ہیں وزیرستان میں, اس کے علاوہ سیرا ویلی میں ان کے کچھ فٹ پرنٹس تھے, اور اس کے علاوہ کچھ پمفٹ وغیرہ یا کچھ ایسے ویڈیوز یا آڈیوز وغیرہ بھی سامنے آئے ہیں جس میں ان کے کچھ ہمدرد یا کچھ سپورٹر نظر آتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پر آپریشن ضرب عزب اور نیشنل ایکشن پلان بڑے زور شور سے ہے, تو اس کی وجہ سے ایسی تنظیمیں آسانی کے ساتھ سر نہیں اٹھا سکتی, خصوصاً جو نئی تنظیم ہوتی ہے اسے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ پہلے جو تنظیمیں ہیں وہ آلریڈی کچھ انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہے اور کچھ سرحد پار کر کے افغانستان چلی گئی, اور کچھ نے سلیپنگ سیلز کی صورت اختیار کر لی ہے. تو پاکستان میں داعش کے لیے ظاہر ہے کہ ایک فضا تو ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ وہ شیٹر زون ہے خصوصاً فاٹا اور افغانستان میں بہت زیادہ ہے, لیکن مجھے جو خطرہ ہے وہ افغانستان کی طرف سے کہ اگر وہاں پر جو پاکستان کے ساتھ جو صوبے ملتے ہیں اور خصوصاً فاٹا کے ساتھ 5 صوبے جو ملتے ہیں जिसमें फारसी पचीसा निग्रहार वगैरह और ये पुनर वगैरह शामिल है। तो अगर निग्रहार वगैरह है तो पुनर जा सकते हैं और इसके अलावा फारसी पचीसा भी आ सकते हैं, तो फिर हमारे यहाँ उनका इंग्रेस हो सकता है। और फिर इस थ्रेट को हमने जाहिर है कि बड़ा फोर्सफुली और बड़ा प्रोएक्टिव तरीके से उसको डील करना होगा और उसके साथ निमटना होगा। और क्योंकि दाइश के पास पैसा भी काफी है और वो लीडरशिप भी ऑफर करते हैं और इसके अलावा वो फाल भी मतलब एक जो जिस तरीके से मशीतोस्ता में वो फाल है शाम और इराक में, तो वो ज्यादा डिडली है दिन अलकायदा एंड मतलब एक चीटी थी। तो और दूसरी बात है कि उनकी जो अफजाइश है इतनी तेजी से कोई भी ऐसी तंजीम अफजाइश नहीं कर पाई है जिस तरीके से तालीम याफ्ता लोग और मुख्तलिफ मुल्कों के लोग तकरीबन 40 लोगों के लोग उसमें शामिल हो और वो एक जमीन के खत्ते पर कब्जा करे और वो बाकायदा फिर एक सोशल मीडिया को बड़ा प्रोएक्टिवली इस्तेमाल करे, इफेक्टिवली इस्तेमाल करे। तो ये इस्तेदाद बहुत कम ऐसे तंजीमों में पाया जाता है, लेकिन ये इस्तेदाद उसमें है और अगर इस्तेदाद है तो फिर थ्रेट बड़ा है और थ्रेट बड़ा होने की वजह से उसके लिए आपको दाम भी बड़े बिछाने होंगे, स्ट्रेटेजी भी बनानी होगी और उसका रास्ता भी।
एग्जैक्टली, इसीलिए शायद बड़े बड़े काम हो भी रहे हैं, इत्तेहाद भी बड़े बड़े बनाए जाने। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान बुखारी साहब आप हमारे साथ रहिएगा, चंद सेकंड की एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अगेन इस्लामिक स्टेट या दाइश वही हमारा मौजू है। पाकिस्तान में तो उसके फुटप्रिंट्स के रेफरेंस में आपसे तफसील से बात हो चुकी है, लेकिन अब भारत के अंदर इसके खदशात महसूस किए जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपका एनालिसिस लेते हैं।
What's up Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up Pakistan? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
प्रोग्राम जहारंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे इस्लामिक स्टेट या दाइश, उसके जो एक्सपेंशन के बज़ाहिर लग रहा है कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर हम गुफ्तगु करेंगे, क्योंकि इनिशियली ये कहा जाता था कि उसका बुनियादी जो फोकस है, तवज्जो का मरकज़ है, वो इराक और शाम के इलाके हैं जहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली एक स्टेट कायम करना चाहते हैं। लेकिन अब बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि चूंकि अलकायदा को ये तंजीम बज़ाहिर रिप्लेस करती नज़र आती है या अलकायदा के जो एफिलिएट्स हैं वो दाइश की तरफ अट्रैक्ट होते जा रही हैं, तो इसलिए इसके एजेंडे में भी थोड़ी वसत आ रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान इस रीजन में उसके क्या फुटप्रिंट्स हैं, इस पर बहुत तफसीलन बात होती रही है हमारे प्रोग्रामों में, लेकिन आज हम जिक्र करेंगे कि भारत कितना वल्नरेबल है। भारत के जो स्टेट मिनिस्टर फॉर होम है किरण राजीव, अगर मैं उनका नाम से सही ले रहा हूँ, रिजिजो समथिंग बताया जा रहा है, किरण रिजिजो, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो ये कहते हैं कि भारत की 5 रियासतें ऐसी हैं जो दाइश के लिए बहुत वल्नरेबल हैं, जहाँ पे उनके बकौल जो मुस्लिम अक्सर नौजवान हैं उनको वो अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन उनका ये भी दावा है कि भारत इस चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो देखेंगे कि भारत के अंदर जो सियासी समाजी और मुआशी हालात हैं उनको दाइश के सद तक एक्सप्लॉइट कर सकती है। हमारे साथ हैं एनालिसिस के लिए कामरान बुखारी साहब, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ऑफ मिडल ईस्ट, और हमें ज्वाइन किया है वकार अहमद साहब ने, प्रोफेसर हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस, रिसर्च उनकी खास तौर पे है कम्युनलिज्म एंड टेरर इन इंडिया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वकार साहब आप बताइएगा, भारत से आपका ताल्लुक भी है, भारत कितना वल्नरेबल है दाइश के सामने या दाइश के हवाले से? जी वकार साहब आप मेरे पास। जी
कोई भी रीजन वल्नरेबल है, पर पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया से कंसर्न है तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जो मिनिस्टर साहब ने कहा है वो पर्टिकुलरली साउथ इंडियन स्टेट्स को हिंट करते हुए कहा, रीजन ये है कि बहुत सारे साउथ इंडियन मुस्लिम माइग्रेंट्स जो है वो मिडल ईस्ट में जा चुके हैं और बहुत सारे नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स भी मिडल ईस्ट जा चुके हैं।
सही।
जब वो मिडल ईस्ट में जब वो काम कर रहे थे तो उनको वो सलाफिस्ट आइडिया वहाबी आइडिया से कुछ हद तक इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। जो नॉन मुस्लिम्स थे उस रीजन में वो भी, उनके अंदर भी कम्युनलिज्म जो है वो थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें वहां पे रहना कोई खास पसंद नहीं आया उनको, ह्यूमन राइट्स इश्यूज और लिबर्टी वाली इश्यूज जो है खटती है। तो साउथ इंडिया में कुछ एलीट सेक्शन, बहुत माइनर एलीट सेक्शन जो माइग्रेंट लेबर परफॉर्म जिन्होंने किया है, उनके अंदर एक कम्युनल एस्पेक्ट तो बढ़ा है, तो वो एक रीजन हो सकता है। बट जस्ट बिकॉज कोई वहाबिस्ट आइडिया या सलाफिस्ट आइडिया से अग्री करता है या अडॉप्ट करता है, जरूरी नहीं है कि वो टेररिस्ट बन जाए या आईएसआई ज्वाइन कर ले। ये दोनों चीज में कोई नेचुरल कंपैटिबिलिटी नहीं है।
ठीक है, लेकिन ये जो अभी खासतौर पे जिस स्टेटमेंट का हमने रेफरेंस भी दिया है, पांच रियासतें केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन रियासतों के नाम लिए हैं आपके स्टेट मिनिस्टर फॉर होम ने। जाहिर है बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां उनके ताबे हैं, तो किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ही वो बात कर रहे होंगे। तो आपके ख्याल में अगर हम फिर इंडिया की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी देखें अगेंस्ट इस नौयत के खतरात के, तो उसको आप कहाँ रेट करेंगे?
जैसे कि मैंने कहा, ये साउथ इंडियन स्टेट जैसे केरला और तेलंगाना आपने मेंशन किया, तमिलनाडु मेंशन किया, ये इन स्टेट्स में मुस्लिम्स को गवर्नमेंट जॉब्स या ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स कम मिले हैं, ये माइग्रेट किए, तो इसलिए एक बेसिस बन जाता है। बट अगेन इंडिया का पॉलिटिकल डिस्पोजिशंस भी देखना होगा। यहाँ आज के तारीख में बहुत सारे राइटर्स ने अपना अवार्ड, बहुत सारे आर्टिस्ट थे अपने अवार्ड वापिस किए हैं, ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में बहुत इनटॉलरेंस हो गया है। इनटॉलरेंस सच्चाई, आप सच मानिए तो बहुत माइनर, बहुत वीक टर्म है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में स्टेट टेरर का जो है वो वजूद जो है वो स्ट्रेंथन हुआ। स्टेट टेरर से ये मेरा कहना है कि अगर आप माइनॉरिटी हो हिंदुस्तान में, या तो आप सेक्युलर इंटेलेक्चुअल हो, तो आप गवर्नमेंट से, सिर्फ डायरेक्टली गवर्नमेंट से नहीं, बट जो इस गवर्नमेंट को वोट करती है, बीजेपी गवर्नमेंट को जो लोग वोट करते हैं, उनसे आप टेररिज्ड हैं। चाहे आप सोशल मीडिया देख लीजिए या एवरीडे लाइफ देख लीजिए, रोजमर्रा की जिंदगी, लोग टेररिज है। क्योंकि अगर आप गावकशी के नाम पे आपको मार दिया जाता है, या तो आप कोई फिल्म में अगर लिबरल पोजिशन या क्रिटिकल ऑफ राइट विंग पार्टीज लेते हैं, तो वो मूवीज बंद कर दिए जाते हैं। आप अगर कुछ लिखते हैं जो रूलिंग डिस्पोजिशन को पसंद नहीं आता है, तो वो सब, वो सारी इश्यूज जो है फर्मेंट करके माइनॉरिटीज और बहुत सेक्युलर इंटेलेक्चुअल, सेक्युलर पब्लिक जो है वो लिटरली हिंदुस्तान में टेररिज्ड हो गए हैं।
जी, लेकिन तो, जैसे आपने खुद मेंशन किया, इसमें एक मुस्बत पहलू तो ये है कि भारत की सिविल सोसाइटी, उसने अपने होने का एहसास दिलाया है, रिएक्ट किया है ऐसे ट्रेंड्स के खिलाफ। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जो हालिया एक सीरीज है वाकयात की, उसके नतीजे में ये तासुर जरूर मिला है कि भारत के अंदर जैसे जो सेकुलरिज्म है उसके लिए स्पेस सुकड़ती हुई नजर आती है। और बहुत सारे एनालिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि यही वो अवामिल होते हैं जिनको दाइश हो या अलकायदा हो या दीगर दहशतगर्द तंजीमें हों, वो उनको एक्सप्लॉइट करती हैं। कामरान बुखारी साहब, आपका एनालिसिस, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रेफरेंस में तो कहा जाता है कि उसके एथनिक और जो रिलीजियस डिविजन्स हैं उनको वो एक्सप्लॉइट कर सकती है, भारत क्यों कर वल्नरेबल है?
देखिए, मैं अपने साथी पैनलिस्ट से इत्तफाक करता हूं कि एक तो ये है कि जो सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं, तो वहां पर जो है वो सलफीज्म जो है, जिसको सलफीज्म नहीं कहा जाता साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में, उसको अहल हदीस कहा जाता है या अहल हदीस, और वो जो ग्रो है वो खासा जो है उनकी एक प्रेजेंस है। फिर ये है कि जैसे उन्होंने फरमाया कि गल्फ में उनके जो है काम के सिलसिले में वो जाते रहे हैं और वहां पर उनको एक्सपोजर मिला है। अगर इस रियलिटी को देखा जाए और दाइश के प्रोपेगेंडे को लिया जाए, और फिर ये है कि जो मौजूदा इंडियन हुकूमत के जो राइट विंग एलाइज हैं उनकी जो कार्रवाइयां हैं, और जो एक तरह से कल्चर के अंदर तब्दीली नजर आ रही है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि वो जो गांधीयन नेहरूवियन व्यू ऑफ सेक्युलर स्टेट है, उसको जो है वो अच्छी खासी चैलेंज का सामना है एक नए पॉलिटिकल कल्चर की तरफ से। तो ये जो कश्मकश चल रही है, ये फिर एक जो है वो स्पेस प्रोवाइड करती है आईएसएस को, और जो मतलब चल वो एक तरह से ऑन गोइंग जो ग्रीवेंसेज हैं मुसलमानों की भारत के अंदर बहसियत माइनॉरिटी के, तो फिर उनको एक्सप्रेशन मिलने के मौके मिलते हैं। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि वल्नरेबिलिटी है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि जो एक रेजिलियंस है सेक्युलर कल्चर की, सेक्युलर पॉलिटिकल कल्चर की, जिसकी हम जो है देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी की तरफ से बहुत ज्यादा जो है ना पुरजोर किस्म का पुश बैक आ रहा है, तो वो उसकी वजह से मैं समझता हूँ उतने हालात खराब नहीं है। अब जो है कुछ लोग क्या दाइश में चले जाएंगे, हाँ जी जरूर जो है ना ऐसी जो है पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसका तखमीना लगाना क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की ग्रेन्युलर डाटा नहीं है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि भाई जो है किस हद तक दाइश को कामयाबी हासिल होगी। जरूर इनरोड्स बनाएंगे, लेकिन जैसे जो है वो मेरे साथी पैनलिस्ट ने फरमाया कि तमाम सलफी जो है वो नेसेसरली जो है वो जिहादी नहीं बनते, और सलफीज्म भी जो है वो इवॉल्व हो रहा है। मैं भी एक जो है वो आर्टिकल पे काम कर रहा हूँ कि जो सलफीज्म को जो है वो तीन डायरेक्शंस में जो है ना खींचा जा रहा है उसके ऊपर है, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि मैं समझता हूँ कि मदद करेगी इंडिया को शील्ड करने के लिए अपने आप को, क्योंकि जो है जैसे मैंने कहा एक सेक्युलर कल्चर भी है, सलफीज्म भी कॉम्प्लेक्स है, और फिर सिविल सोसाइटी का जो पुश बैक है वो भी थोड़ी सी रिस्पाइट देती है।
जी अच्छा कामरान बुखारी साहब, हम इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे, लेकिन चूंकि मेरा जो अगला सेगमेंट है उसमें तुर्की और रशिया के रिलेशनशिप को देखना है, लेकिन वहां भी दाइश के रेफरेंस में मैं आपसे सवाल अभी इसी में करना चाहूंगा, फिर आपसे इजाजत लेंगे। आपके ख्याल में तुर्की जो बहुत रिलक्टेंट रहा है, खा वो दाइश हो या सीरिया के अंदर जो पॉलिटिकल या सिविल वार रही हो से, अब वो बाहर बड़ा फ्रंट लाइन पे आता हुआ नजर आ रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, इंटरनेशनल अट्रैक्शंस हैं पैकेज की सूरत में, या तुर्की का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डेवलप हुआ है यहाँ तक कि वो रशिया तक के खिलाफ जो है वो खड़ा हो गया है?
देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि तुर्की की जो सब्जेक्टिव जो प्रेफरेंस है वो ये है कि वो उसको कम से कम जो है सीरिया के अंदर इन्वॉल्व होना पड़े फिजिकली। हाँ, मुहाजरों को जो है टेक केयर करना वो अलग बात है, रेबल ग्रुप्स को जो है इमदाद करना, मुआवनत करना, वो एक अलग बात है, लेकिन फिजिकली सीरिया के अंदर इन्वॉल्व होना वो उनकी प्रेफरेंस, सब्जेक्टिव प्रेफरेंस नहीं है। लेकिन जो हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं, फिर रूस का इसमें छलांग मार लेना इस जंग के अंदर, और फिर असद हुकूमत की जो रीसेंट गेन्स हैं रूसी मदद की वजह से, उसकी बिना पर जो है, और फिर दाइश के उभरता हुआ जो है जो एक वेव है, और फिर रूस यूरोप का जो को जो खतरात लाहक हैं, और फिर आलमी प्रेशर का जो इंक्रीज होना, उसकी वजह से एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है ना क्रिएट हो रही है कि जिसमें मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में हम तुर्की को बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे हम जो है फौजी कार्रवाई करते हुए देखेंगे सीरिया के अंदर। मैं नहीं समझता कि इससे जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, अब देखना ये है कि वो फॉल आउट को मैनेज किस तरह करेंगे।
बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। सामिन चंद सेकंड की एक ब्रेक, वकार अहमद साहब हमारे साथ रहेंगे, और उसके बाद हमें मुश्ताक अहमद मेहर साहब ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर एम्बेसडर मिडिल ईस्ट इश्यूज के एक्सपर्ट हैं, लेकिन चंद सेकंड की एक ब्रेक के बाद।
What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
प्रोग्राम जहांरंग में एक बार फिर आपका खैर मकदम, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे तुर्की और रूस दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी है, खासतौर पे जो गुज़श्ता हफ्ते वाकया पेश आया जिसमें तुर्की ने तैयारा मार गिराया शाम रशिया का, उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी का सिलसिला जारी है। उसमें कभी हमें बहुत ज्यादा शिद्दत नजर आती है, कभी डीएस्केलेट होती हुई सूरत हाल नजर आती है, लेकिन दोनों मुल्कों की क्यादत के दरमियान लफ्जों की जंग बहरहाल जारी है। तुर्की के सदर ने और तुर्की के वजीर आजम ने बावर कराया रूस को कि वो आग से मत खेले, और इसी तरह रूस ने कुछ अमली पाबंदियां वो भी लगाना शुरू कर दी हैं टूरिज्म पे, खासतौर पे दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ वो अपने शहरियों को मतनबे कर रहे हैं कि एक दूसरे के मुल्कों में सफर से गुरेज किया जाए। ये वो हालात हैं जिसका हम एनालिसिस करेंगे। इस रीजन के अंदर दोनों मुल्क बड़े एक अच्छे आम इत्यादि भी समझे जाते थे, और अब ये टेंशन दोनों मुल्कों को कहां लेकर जा सकती हैं, ترکی کے اوپر جو بین الاقوامی اوبلیگیشنز آ رہی ہیں یا پریشرز آ رہے ہیں, یا ترکی بذات خود جو اپنی مرضی سے یا اپنے انٹرسٹ سے جو کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے یا جس جو کردار اس کو سونپا جا رہا ہے اس کے ریفرنس میں روس کے ساتھ اس کی کشیدگی میں مزید کتنا اضافہ ہو سکتا ہے, انالیسس کریں گے وقار احمد صاحب, پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکسس میں, اور مشتاق احمد میر صاحب نے جوائن کیا, فارمر امبیسڈر پاکستان کے مشرق وسطی کے امور کے اور انٹرنیشنل ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں. میر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کا خیر مقدم. اسی پہلے سب سے پہلے ترکی اور رشیا ٹینشنز پہ آپ ہمیں بتائیے گا, بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. وقار احمد صاحب, ترکی اور روس کے درمیان اس کے تعلقات میں کشیدگی, اس کی سمت کیا بن رہی ہے, کیا ڈائریکشن ہوگی, کوئی میڈیٹ کرے گا یا یہ مزید اس میں اضافہ ہو سکتا ہے؟
یہ سب سے پہلی بات ہے کہ ترکی جو ہے اسد رجیم کے خلاف جو ہے کافی دور تک جا چکی تھی, ان کی جو ڈیمانڈز تھی اسد رجیم ریموو کیے جائے پر, اور اس بہانے آئیسس کو تو ایک طرف سے وہ اٹیک کر رہی تھی پر, اور اس کو یوز کر کے وہ کردش ریبلز کو بھی کافی کرش کر رہی تھی.
صحیح.
تو اب ترکی جو ہے ایک بہت پرابلمٹک سچویشن میں ہے. ورلڈ جو ہے بہت ویسٹرن پاورز اب بلیو کر رہے ہیں کہ اسد رجیم کو شاید ڈی سٹیبلائز کرنا ابھی ٹھیک نہیں ہوگا ان دا کانٹیکسٹ آف آئیسس حرکت کی وجہ سے, ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ترکی جو ہے سڈنلی اپنے آپ کو ایک بہت یونیک سچویشن میں پا رہی ہے. تو ترکی کی یہ کوشش میرے خیال سے یہ ہے کہ کسی طرح سے ایک نیٹو میں ترکی کے اراؤنڈ ریلی کرنے کی کوئی ایک اگریمنٹ ہو. تو وہ رشیا کو اٹیک کر رشین پلین کچھ دیر کے لیے ٹرکش ایئر اسپیس میں انٹر کی تھی, اور ترکی بھی وائلٹ سیرین ایئر اسپیس کو بار بار کر رہی ہے. تو یہ نہیں کہ رشیا نے کچھ بہت یونیک کیا ہے. تو رشیا کو رشین پلین کو برنگ ڈاؤن کرنے کی یہ ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ نیٹو نیشنز کو ریلی اپ کر رہی ہے ان اٹس انڈیور کہ وہ کردش ریبل کو اپنا اٹیک کر جاری رہے, اور ویسٹرن نیشن کو ترکی کی ضرورت ہے آئیسس کو بیک فٹ میں کرنے کی. تو یہ بیسیکلی جیو پولیٹیکل گیم چل رہا ہے. اس میں رشیا کا کیا رول ہوگا اور رشیا کس طرح سے اٹیک کرے گی یہ ابھی کلیئر نہیں ہے. کیا وہ ٹرکی کو بام کرے گی یا نہیں, پر پوسیبلٹیز بہت لو ہے کیونکہ نیٹو الائنس جو ہے
وہ بڑی شیلڈ ہے ٹرکی کے لیے. اور سیکنڈلی ایک اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ بہرحال بزنس اینڈ کامرس جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ بہت سارے ملکوں کو بہت کچھ کرنے سے روکتے ہیں. ترکی اور روس دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا والیوم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تجارت کا, ٹریڈ کا, جو کہ ٹوریزم کے ساتھ وابستہ ہے یا باقی بہت سارے شعبوں میں. مشتاق احمد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میر صاحب آپ کا انالیسز میں لینا چاہوں گا, آپ کے خیال میں ترکی اور روس کی جو کشیدگی ہے یہ کہاں جائے گی, یہ اب اس کو ڈیزالو ہونا ہے انٹرنیشنل پلیئرز یا انٹرنیشنل فورم جیسے نیٹو ہے, ورلڈ الائنس جو بن رہا ہے داعش کے خلاف وہ انٹیگریٹ کرے گا ان دونوں ملکوں کو, یا یہ کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ بظاہر لفظوں کی بھی جنگ جاری ہے اور ایک دوسرے کے خلاف پابندیاں وہ بھی دونوں ملک عائد کر رہے ہیں.
جی میری ایسٹیمیشن یہ ہے کہ ترکی اور روس کے تعلقات زیادہ خراب ہوں گے, زیادہ بگڑیں گے. میں 1970 میں ترکی میں تھا تو ان دنوں یہ جو روس اور ترکی کے بارڈر تھے ان کو نیٹو سرکلز ہارٹ بارڈر کرتے تھے, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہاز ایک دوسرے کے ملک میں آ جاتے تھے, ان کو گھیر لیتے تھے, ان کو فورس لینڈنگ کرواتے تھے, پھر ان کو ایکسچینج کرتے تھے. اور یہ جو واقعہ ہوا یہ بہت سنجیدہ ہے, اور میری ایسٹیمیشن میں یہ بہت بڑی ٹیکٹیکل ایرر ہوئی ہے ٹرکش ملٹری سے, کیونکہ یہ وار زون ہے اور وار زون میں رشیا کے جہاز کو مار گرانا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط فیصلہ تھا, کیونکہ وہ بنیادی طور پہ سیریا کی مدد کر رہے ہیں اور سیریا میں داعش کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اور داعش جو ہے وہ الٹیمیٹلی ترکی کا بھی دشمن ہوگا, کیونکہ اس وقت جو ڈویژن ہو رہی ہے وہاں پہ جس میں کرد ہیں, جس میں سنیز ہیں, جس میں الاوائٹس ہیں, تو اس میں داعش کی جو ہے نا الیمینیشن وہ سب کا ایک کامن آبجیکٹو ہے, لیکن یہ امریکن کے کہنے پہ ترکوں نے کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ٹرکش پرائم منسٹر کو اب احساس ہوا ہے کہ یہ ان سے کوئی ٹیکٹیکل غلطی ہوئی ہے, حتی المقدور وہ کوشش کریں گے کہ اس کو کسی طرح وہ لو لیول پہ رکھیں یا اس کا وے آؤٹ ڈھونڈیں. لیکن رشیا جو ہے وہ ایک بڑی پاور ہے اور وہ بھی اس کو سیٹل کرنا چاہ رہا ہے یوکرین کے, تو وہ اس کو اچھالے گا اور وہ اس کو ترکی کو ایک مثال بنانے کی کوشش کرے گا جس میں وہ ہم کہتے ہیں شو آف پاور.
لیکن میر صاحب ترکی کو نیٹو کا شیلٹر حاصل ہے, نیٹو بھی وارن کر رہا ہے رشیا کو کہ وہ کسی طرح کا کوئی ایکشن نہ لے, اور لگ یہ رہا ہے کہ روس جس کا پہلے دن ریئیکشن بہت سخت تھا نیچرلی, اب وہ تھوڑا پیچھے ہٹ رہا ہے, لگ رہا ہے کہ کوئی ملٹریلی ریئیکشن سامنے نہیں آئے گا.
جی یہ اسٹیٹس میں جو آپ دیکھتے رہیں گے, اب رشیا جو ہے وہ بھی ری اسس کرے گا کہ وہ اس انسیڈنٹ سے کیا کنسیشنز حاصل کر سکتا ہے, کیونکہ رشیا کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سیریا میں اس کو فٹ ہولڈ مل جائے, لیکن وہ اپنی فزیکل پریزنس نہیں چاہے گا, وہ اس پرابلم میں سکن نہیں ہوگا جس طرح وہ افغانستان میں ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کے ساتھ اگر وہ میکسیمم کنسیشن حاصل کر سکتا ہے تو وہ ضرور اپنے جو اس کی اسٹریٹجی ہے اس میں تبدیلی لائے گا, لیکن اس وقت جو ہے وہ شو آف پاور جو ہے, شو آف اسٹرینتھ جو ہے وہ ضرور کرے گا.
بہت شکریہ مشتاق احمد میر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. وقار احمد صاحب پروفیسر ایٹ یونیورسٹی آف نارتھ ٹیکساس, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سامعین اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کریں گے, لیکن پروفیسر اکبوٹا یالدس بیکووا جو کہ پروفیسر ہیں پولیٹیکل سائنس کی, اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ہے یوریشین انٹرنیشنل اسٹڈی ایسوسی ایشن کی, پروفیسر ہیں یونیسکو چیئر آف ایتھنک اینڈ ریلیجیس ٹالرنس کی, آستھانہ میں بیسڈ ہیں, ان سے ہم نے ان کا انالیسز لیا ہے اس کرنٹ ٹینشن پہ ترکی اور روس کے درمیان. آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں.
The conflict has created a new level of political risk which increased tension between the two countries. And the economic question, no matter how important it looks like, is the secondary in this case. Both Russia and Turkey have long been linked mutually in many spheres. Energy, tourism, construction industry, and trade. Among the major joint projects, South Stream gas pipeline and the Aku nuclear power plant, in which Russian investments constitute of $3 billion. Most of the Russian experts are in favor of curtailing them. Most likely, it will be temporarily freezing.
جی
ترکی نیڈز ان گیس آر فور 55% کورڈ بائی رشیا, اینڈ دی ٹرمینیشن آف سپلائی کڈ برنگ دی انرجی کرائسس, اینڈ آف کورس دی لاس ول بی میوچل بائی گیس پروم. رشیا ان سیکنڈ پلیس آفٹر جرمنی امانگ فورین ٹریڈ پارٹنر فار ترکی. There are more than 700 Turkish stores in Russia. And of course, the loss of the Russian market will create difficulties for the textile and the automotive industries in Turkey. Many Turkish contractors are involved on the Russian market. The loss of the Turkish market on agricultural products, Russia, as has been announced, can replace...
جی سامعین یہ پروفیسر اکبوٹا کے انالیسز آپ سن رہے تھے, اور ان کا مختصراً اگر میں آپ کے لیے بتاتا چلوں اپنے اردو آڈینس کے لیے, تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو حالیہ ٹینشن یا کشیدگی ہے وہ بہت فطری ہے, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ جس لیول پہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت, بزنس, ٹریڈ اور ٹوریزم میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں, لگتا نہیں ہے کہ یہ جو فریزنگ ہے تعلقات کے اندر جو کشیدگی ہے وہ زیادہ دیر قائم رہ سکے گی. انہوں نے یہ بتایا کہ $3 billion جو ہے وہ تین بڑے میگا پروجیکٹس پہ رشیا جو ہے وہ انویسٹ کر چکا ہے, اسی طرح ترکی جو ہے وہ اپنی جو گیس کے جو ذرائع ہیں, ریسورسز ہیں, اس کے لیے 50% تک وہ روس کے اوپر انحصار کرتا ہے. تو الٹیمیٹلی دونوں طرف جو ہیں وہ پریشرز یہ ہوں گے کہ ان تعلقات کو سسٹین کیا جائے اور ان سے پیچھے نہ ہٹا جائے, لہذا یہ جو کشیدگی ہے یہ عارضی نوعیت کی ہوگی. یہ تھا انالیسز پروفیسر اکبوٹا یولدس بیکووا کا. اس سیگمنٹ کو انہیں کے انالیسز کے ساتھ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں, واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. ब्रेक.
व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa. हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर. व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com.
प्रोग्राम जहां रंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम. मैं हूं असद हसन और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत पे. बल्दियाती इंतखाबात तीसरा मरहला 5 दिसंबर को, लेकिन इस्लामाबाद वफाकी दारुलहुकूमत वहां पे 30 नवंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं. मकामी हुकूमतों के क्याम के लिए पहले दोनों मरहलों में हमने ये देखा है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो बहुत मजबूत रही. और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका एक फिनोमेना है या जिसके अंदर ये समझा जाता है कि बड़ा एंथुसियाज्म है, कोई बड़ी कारकर्दगी नतायज की हद तक दिखा नहीं सकी है. और पहले दो मरहलों में यह भी देखा गया है कि इमरान खान, जो कि तहरीक इंसाफ के सरबराह भी हैं, उन्होंने अपने आप को ज़्यादा वो एक्टिवली इंगेज नहीं हुए उस कैंपेन में. लेकिन अब तीसरे मरहले के लिए वो लाहौर हो, वो कराची हो, वो इस्लामाबाद हो, माफ़ी चाहता हूँ लाहौर में हो चुके, इस्लामाबाद हो या कराची हो, बहुत मसरूफ़ वो नज़र आ रहे हैं और कैंपेन चलाते हुए नज़र आ रहे हैं. क्या इम्पैक्ट हो सकता है खासतौर पर कराची के अंदर? आज जो वहाँ पर एक मुश्तरक रैली थी जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की, क्या मुख्तलिफ नतायज हो सकते हैं? या वहाँ पर भी जैसे MQM ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पिछले मरहलों में सखर में या हैदराबाद में अपनी बर्तरी को बरकरार रखा है, क्या वो उसको कायम रख पाएंगी? ये हमारा सवाल है और इस पर हम एनालिसिस भी लेंगे. हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम के हिस्से में माजिद सिद्दीकी साहब, कराची बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, इंटीरियर सिंध की पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जर्नलिस्ट हैं और कॉलमिस्ट हैं. और हिना मलिक हमें ज्वाइन कर रही हैं बरतानिया से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ वाबस्ता हैं. और जुनेद बशीर साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी वाबस्तगी है, अमरीका में बेस्ड हैं. मैं पोलिटिकल एनालिसिस, मेरा ख्याल है पहले रिएक्शन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद माजिद आपके पास आऊँगा इंडिपेंडेंट एनालिसिस के लिए. हिना मलिक, पहले तो आप बताइएगा, आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज बज़ाहिर जिसने बड़ा एक तरह से लीड ली है दोनों मरहलों में पंजाब के अंदर, क्या तीसरे मरहले में भी बरकरार रख पाएगी? और एक क्रिटिकल सवाल भी ये ज़रूर है, बज़ाहिर ये लगता है, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि एक तरफ तो 3,000 की कुर्सियां फिल करने के लिए टीचर्स बुलाने पड़ते हैं, लेकिन जो इंतखाबी नतायज हैं वो पार्टी के हक में जाते हैं, क्या वजूहात हैं उसकी?
Assalamualaikum. Thank you for giving me a chance to be on your program. आपने जो बात की है, आई थिंक वो उसका मुंह बोलते सबूत तो ये है कि जब गवर्नमेंट ऑब्वियसली बाहरी अक्सरियत के साथ PML नून आई थी, तो उनका एक मैंडेट था जिस पे वो काम करना शुरू हो गए थे, रिगार्डलेस ऑफ के बीच में उनको किस किस तरह रोका गया है फ्रॉम ऑपोजिशन और ये वो, लेकिन वो अपने उस पर कायम रहे. और वो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन के हवाले से है और एनर्जी के हवाले से, जो सिमल्टेनियसली काम चल रहा है वो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को नजर आ रहा है. कि जब ये गवर्नमेंट में आए हैं तो पिछले 10 साल जो भी जिस तरह की भी उन्हें वो अपना मुल्क जिस तरह जिस हालत में मिला, उसको टाइम लगना था, उसको दोबारा एक नए सिरे से पहले तो स्कैफोल्डिंग करनी थी, उसे उस लेवल पे लाना था, फिर आगे का फ्यूचर देखना था कि हाउ दे विल इन्वेस्ट. तो उनके पास एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन थे, शॉर्ट टर्म था, मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म, इस पे वो काम कर रहे हैं. और इस हिसाब से आई थिंक लोगों को नजर आना शुरू हो गया है कि वो बहुत ज्यादा शोर शराबे के कायल नहीं है, वो मॉडलिंग से अपने लोगों में शऊर पैदा कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम में कि वो खुद चूज करें कि कौन ज्यादा काम.
तो तीसरे मरहले के लिए भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी पार्टी जो है तीसरे मरहले में भी उसी रेशियो के साथ आगे बढ़ेगी?
उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि जिस तरह पहले दो मरहलों में अच्छी तरीके से उन्होंने वो लीड के साथ वो ऑब्वियसली विनिंग हुई है, तो यही चाहेंगे कि जो अब फेज 3 उसमें भी लोग उसी एंथुसियाज्म से बाहर आए, बिकॉज दिस वॉज अ बिग चेंज कि लोग बाहर आके वोट डालना चाह रहे हैं. फिर वुमेन को भी इंकरेजमेंट मिल रही है, 51% वोट इज फॉर वुमेन, तो वो भी बाहर आ रही हैं. और फिर यहाँ ऑब्वियसली यही बात आ जाती है कि जो लोग खुद इतना शऊर आ चुका है पाकिस्तानी अवाम में कि वो देख रहे हैं कि कौन डिलीवर कर सकता है, कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर है. और इसमें जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे ये चाइना पाक चाइना कॉरिडोर है, उस हवाले से अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल तो इन्हीं चीजों से नजर आना शुरू हो गया है.
ये 2-4 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं इस पे आप बेस कर रहे हैं. जुनैद बशीर साहब, आपका एनालिसिस और आपसे भी क्रिटिकल क्वेश्चन के साथ, जलसे आपके बड़े शानदार हो सकते हैं, लोग बहुत हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन वो वोट जो है ट्रांसलेट नहीं, वोटों में ट्रांसलेट नहीं होती, वो पॉपुलैरिटी जो जलसों में नजर आती है. इस्लामाबाद में भी कल जलसा हुआ, काफी पार्टिसिपेशन थी आज कराची के अंदर, लेकिन आपके ऊपर भी क्रिटिसिज्म ये है कि जो पॉलिटिकल रेटोरिक्स हैं, जो नारेबाजी है, इल्जाम तराशी की जो सियासत है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे नहीं आने दे रही. तीसरे मरहले में आप क्या तब्दीली तवक्कु कर रहे हैं?
سر السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے شو میں لیا. اسلام آباد کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد میں دیکھیں جو دیہی علاقے کی سیٹس ہیں وہ 26 ہیں, شہری علاقے کی تقریباً 40 ہیں, اور اسلام آباد میں پہلی دفعہ الیکشن ہو رہا ہے 45 ایئرز میں, تو جب سے یہ کیپٹل بنا ہے تو میرے خیال میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی بہت اچھا پرفارم کرے گی, خاص کر سٹیز میں ان کا اچھا چل رہا ہے, دونوں پارٹیز کے ایک ایک ایم این اے وہاں سے, تو اسلام آباد میں دے ول ڈو پری ویل. ایز فار ایز پنجاب میں دیکھیں, جہاں پہ بھی پاکستان کا یہ ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے, ہماری ہسٹری ہے کہ جس کی بھی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو لوکل پارٹیز کو الیکشن جیتتے ہیں. جس طرح سندھ میں پی 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 کا ہولڈ ہے, ادھر نون لیگ کا پنجاب میں ہے, پہلے دو محلوں میں انہوں نے بہت اچھا کیا, لیکن اس دفعہ مقابلہ ٹف ہوگا. جو کونسلر وغیرہ ہیں, یہ گلی محلے کے جو ووٹس ہیں, جو ایک لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو ووٹ ملتا ہے نو ڈاؤٹ, جو نہیں بھی کرتے ان کو ملتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک پاور اسٹرگل ہوتی ہے, جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے ان کو لوگ ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے, ان بندوں سے ہم نے ڈیلی ملنا ہے, پھر ان کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو یہ ووٹ دیتے ہیں. تو ریزلٹ جو ہے پی ٹی آئی اس میں تھوڑا سا بہتر کرے گی. آئی ڈونٹ سی ہیوج ڈفرنس دین جو پہلے دو کے ہوئے, لیکن پھر بھی پی ٹی آئی میں فائٹ کرے.
کراچی میں مختصر ان کراچی میں کیا توقعات ہیں آپ کا, خاص طور پہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو الائنس ہوا ہے اس کے بعد؟
کراچی میں دیکھیے پاکٹس ہیں ڈفرنٹ, ایم کیو ایم کو تو دے آر انٹچبل ان دیئر ایریاز, اور کراچی میں جب بھی یہی ہے کہ حالانکہ وہ اپنے آپ کو وکٹم شو کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر رینجرز جو ہے وہ غلط قسم کے اٹیک کر رہی ہے, ان پہ زوم ڈال رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کراچی میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ لوگوں کو پانی کا مسئلہ ہے, نلکوں میں پانی آنے کی بجائے ٹینکر میں آ رہا ہے, ٹینکر مافیا بنے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ وہ کون ہے, گنڈا گردی کون کر رہے ہیں, لیکن لوگ پھر بھی ڈرتے ہیں. جو لوگ لوگوں کو وہ اکٹھا کر لیتے ہیں ڈرا دمکا کے, وہی چکر ہوگا کراچی میں بھی.
ویسے یہ باؤنس بیک کر گیا, کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم کا کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے, وہ بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈرا دمکا کے کرتے ہیں تو جو پچھلا الیکشن تھا 46 میں, تو وہاں پہ نتائج اس نوعیت کے نہ آتے, مارجن ان کی فتح کا پہلے سے بھی زیادہ تھا. بہت شکریہ جنید بشیر صاحب آپ کا بھی, اور حنا ملک صاحب آپ کا بھی. آپ ابھی انڈیپینڈنٹ انالیسز لینا چاہتے ہیں, اگر آپ ہمیں جوائن رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور مزید 2-3 منٹ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ ہیں ماجد صدیقی صاحب, بڑا انہوں نے ریسرچ کی ہے خاص طور پہ ان اس فیز پہ. ماجد اوور ٹو یو, آپ ہمیں بتائیے گا یہ تیسرا فیز کسی بھی ریفرنس میں مختلف نتائج کا حامل ہو سکتا ہے, خاص طور پہ سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر.
دیکھیں اصل 2005 میں ایم کیو ایم نے کراچی سے الیکشن جیتے تھے, اور تقریباً 178 میں سے 102 کاؤنسلرز کی نشستیں انہوں نے جیتی تھیں, لیکن اس وقت یاد رہے کہ وہ صوبائی اور قومی حکومت میں مرکزی حکومت میں شامل تھے. اس وقت جنرل مشرف کے بلو آئیڈ وائس پارٹی تھی ایم کیو ایم, لیکن اس وقت جو اس 2015 میں جو الیکشن ہو رہے ہیں کراچی میں, اس میں سچویشن قدرے مختلف ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم حقیقی اس زمانے میں الیکشن نہیں لڑی تھی, وہ میدان میں ہے, پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا ایک اتحاد بن چکا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جے یو آئی اور جو اے این پی اس کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے. پھر ایم کیو ایم کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ آپریشن کی وجہ سے کافی متاثر ہوا ہے, ایک فیئر فیکٹر کی بات کی جاتی ہے اس میں بھی تھوڑی کمی آئی ہے. تو جنرلی 2005 سے 2015 میں ایک فرق ضرور ہے, لیکن جو میں نے گراؤنڈ سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا, جو انفارمیشن کلیکٹ کی ہے, اس کے حساب سے مجھے اب بھی یہ لگتا ہے کہ کراچی کے الیکشن میں متحدہ لیڈ کرے گی. 178 میں سے 102 جیتی تھی پچھلی بار, اس وقت 209 سیٹیں ہیں تقریباً, اس میں سے 50% سے تھوڑا سا کم مجھے لگتا ہے کہ کہیں 90-95 کے قریب ایم کیو ایم سیٹیں دے جائے گی. 6 ڈسٹرکٹس ہیں کراچی کے, اور 6 میں سے مجھے لگتا ہے کہ 3 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جن میں ایم کیو ایم جو ہے وہ تمام پارٹیوں کے مقابلے میں لیڈ کرے گی. 18 ٹاؤنز ہیں, 18 میں تقریباً 7 میں اس سے کوئی نہیں جیت رہا, 7 میں اس کے مقابلے ہیں, 4 البتہ ایسے ٹاؤن ہے جہاں ایم کیو ایم کا خود وجود نہیں ہے. تو جنرلی مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو سیٹیں لے کر آئے, پرانے اتحادی بھی ہیں, تو دونوں کا لگتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم جو فگر ہے 150 جو 120 کی جس سے حکومت بنے گی, اگر وہ نہیں لے کر آئے تو तो फिर यही होगा कि उसकी पीपल्स पार्टी के साथ जाकर इलाक होगा और दोनों मिलकर एक बार फिर जो कराची की मेयरशिप और कराची की गवर्नमेंट को शेयर कर सकते हैं।
माजिद, ये बताइएगा, बहुत सारे एनालिस्ट ये समझते थे कि शायद जमात इस्लामी का बहुत बड़ा वोट बैंक है कराची के अंदर और पीटीआई एक नया फिनोमिना है, तो इनका जो अलायंस है वो लीथल हो सकता है, तो क्या ये अलायंस वाकईतन चैलेंज बन रहा है एमक्यूएम के लिए?
असद, इस वक्त तीन जो कराची की सिचुएशन है, वो उर्दू बोलने वाला जो एक्चुअली सेंट्रल वोटर है मुतहदा का भी, जमात इस्लामी का भी और तहरीक इंसाफ का भी, वो तीन उनमें सोच पाई जाती है मेरे हिसाब से। एक तो ये है कि मुहाजिर वोट बहरहाल एग्जिस्ट करता है जिसको मुतहदा बनाए रखती है मुहाजिरों पे जुल्म और इस तरह के जितने भी स्लोगन के साथ, वो वोट अभी तक कायम है। दूसरा वोट जो है वो कराची का उर्दू बोलने वाला मजहबी इन्फ्लुएंस के तहत देता है जो कि जमात इस्लामी को जाता है। एक तीसरा वोट बहरहाल बना है, अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो तहरीक इंसाफ की क्यादत में है, तब्दीली के नारे तले है और उसमें जो कराची का नौजवान तबका जो है, जो पढ़ा लिखी क्लास है, वो एक्चुअली चाहते हैं कि कराची का वो जो स्टेटस जो पिछले 20-25 साल से है, हड़तालें हैं, हालात खराब हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, इनसे किसी तरीके से निकला जाए। और शायद तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो शायद इन हालात से नहीं, और इमरान ने आज कहा भी है कि हम जब हुकूमत बनाने जाएंगे तो उसमें इवन हमें रेंजर्स की भी उस तरह जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक सोच, ये तीनों सोचें पाई जाती हैं, लेकिन अब भी मुहाजिर मेजॉरिटी वोटर जो है उर्दू बोलने वाला, वो मुहाजिर नाम के ऊपर वोट देता है।
एथनिक रीजंस अब भी डोमिनेट करेंगी आपके ख्याल में। बहुत शुक्रिया माजिद सिद्दीकी, आपने हमें ज्वाइन किया कराची से। हिना मलिक, आप लंदन से हमारे साथ थे, और जुनेद बशीर साहब, आप वाशिंगटन से हमारे साथ थे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चंद सेकंड की एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारा आखिरी सेगमेंट लाइटर, जिसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं, मोना शेख हमारे साथ होंगी, पाकिस्तान की या अमरीका के अंदर पहली मुस्लिम पाकिस्तानी फीमेल कॉमिक स्टार, उनसे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद।
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे, लेकिन इस सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा नेगी।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
प्रोग्राम जहानंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम। प्रोग्राम का हमारा ये आखिरी सेगमेंट है और अपनी गेस्ट को हम आपके साथ इस अंदाज में इंट्रोड्यूस कराते हैं।
Hi, I'm Mona Sheikh and these are Mona's Rant.
जी मोना शेख, हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत कम उसकी एक झलक दिखा सके, हमारे साथ मौजूद हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, पाकिस्तान की पहली खातून जो अमेरिका के अंदर परफॉर्म कर रही हैं, पहली स्टैंड अप कॉमेडियन मुस्लिम भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, अमेरिका के अंदर अपनी इस शोबे के अंदर बड़ी जानदार अंदाज में जगह बनाती हुई नज़र आती हैं और मुख्तलिफ वो प्रोजेक्ट कर चुकी हैं हॉलीवुड के साथ और होस्ट करती हैं एट कॉमेडी स्टोर और परफॉर्म कर चुकी हैं लाफ फैक्ट्री कम्पटिशन्स में और चार बार वहां पे वो अपनी अपीयरेंस दे चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मोना शेख, आपने हमें ज्वाइन किया है।
जी आपका, आपने मुझे अपने शो पे
लाया। जी मोना, पहले तो सबसे पहले हमारे जो व्यूवर है वो जानना चाहेंगे आपके बारे में, और इटसेल्फ ये बहुत मुश्किल फील्ड था एक खातून होने के नाते भी और एक पाकिस्तानी होने के नाते भी, तो आपने ये सफर कब शुरू किया और इसका ख्याल क्यों कराया, पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा।
आपने बिल्कुल सही बोला, इसको सफर ही कहते हैं, मोर लाइक सफरिंग
इंग्लिश वाला।
हाँ जी, सफरिंग मानी कि आप मुझे अपने आप को तकलीफ देने का बहुत शौक है, तो मैंने कहा चलो स्टैंड अप कॉमेडी कर लेते हैं।
सही, दूसरों को हंसाएंगे लेकिन खुद तकलीफ में रहेंगे।
दूसरों को हंसाएंगे मगर खुद तकलीफ में रहेंगे, तो मगर मैं मेरा एक्चुअली मेरा स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का कोई कभी कोई आइडिया या कोई प्लान नहीं था।
सही।
मेरा ये बिल्कुल एक्सीडेंटली मैं बनी हूँ स्टैंड अप कॉमिक। मैं न्यूयॉर्क में स्टेज एक्टर होती थी और स्टेज एक्टिंग के बाद मेरी एक दोस्त ने मुझे बोला यार तू मजाक बहुत अच्छे करती है, तुझे चाहिए कितना, तुम स्टैंड अप कॉमेडी करो. मैंने कहा नहीं यार, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती. उसने बोला क्या तुम लिखती हो? मैंने कहा हाँ. कहती जोक्स लिखती हो? मैंने कहा बहुत लिखती हूँ. मुझे कहते तुम्हारे पास स्टेज की एक्सपीरियंस? मैंने कहा हाँ. कम से कहने की दैट्स इट, इसको स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं? मैंने बोला अच्छा. मुझे कहने की हाँ. तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम जाके कॉमिक्स कॉमेडी क्लब में 5 मिनट का वहां पे ओपन माइक जैसा होता है मनी के बिफोर लाइक प्रोफेशनल कॉमेडियंस जब आते हैं, वो जो यंग कॉमेडियंस होते हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं लाइक 2-4-5 मिनट का ना सेट करने के लिए. तो मैंने 5 मिनट का सेट किया और मेरा 5 मिनट का सेट बहुत जबरदस्त गया.
ठीक है, तो उसके बाद आप इनकरेज होगी, आप कहने. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि बड़ा डिफरेंस है अगर हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं पाकिस्तान का और अमेरिका के अंदर, तो जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं या जिसके अंदर मजाक का या लताफत का पहलू होता है अमेरिका के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो बहुत मुख्तलिफ है. तो आप अमेरिकन ऑडियंस को किस तरह से अट्रैक्ट करती हैं?
यू नो अमेरिकन, क्योंकि मैं यहाँ पे पली बड़ी हुई हूँ तो मुझे यहाँ की सेंसिबिलिटीज और यहाँ के जो जो टोन होता है कॉमेडी का वो समझ आता है, डिलीवरी होती है वो समझ आती है. तो यहाँ पे यू नो ये काफी अप्रिशिएट करते हैं कि जब आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हो या पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बताते हैं या पाकिस्तानी अम्मियों के बारे में बताते हैं कि यू नो उनकी जो डायरेक्ट एडवाइस होती है वो चलती नहीं है, क्योंकि आप तो पाकिस्तानी मेंटेलिटी से सोच रहे हो राइट. अम्मी से बोले कि भाई अम्मी मैंने मुझे कोई लड़का पसंद है, मुझे डेट पे जाना है, तो अम्मी बोले हाँ उसको जाते के साथ ही बोल देना कि तुम्हें शादी करनी है और बच्चे पैदा करना है. लाइक अमेरिकन स्टैंडर्ड से दैट्स लाइक दैट्स रियली बैड राइट, क्योंकि अमेरिका में आप ऐसे नहीं करते हैं. सो जस्ट अ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट.
आपकी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, आप इसमें अपनी रियल अम्मी को भी गालबन लेके आई हैं अपने अपनी क्रिएटिव वर्क में या कंट्रीब्यूशन में.
अम्मी को मैं हमेशा शोज पे लाती हूं.
सही. अच्छा हमें ये बताइएगा कि आजकल पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे अगर हम कॉमेडी देखें, ये सिटिंग्स ज्यादा हो रही हैं, स्टैंड अप तो बहुत कम रह गया है, लेकिन उसके अंदर हम पॉलिटिकल सैटायर वो ज्यादा है, तो आपको क्या चीज ज्यादा फैसिनेट करती है या अट्रैक्ट करती है आपके मौजूदात में?
मुझे डेफिनेटली मुझे डेफिनेटली पॉलिटिकल सैटायर पसंद है, मगर मुझे और भी चीजें पसंद है, जैसे जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे. आई थिंक जो यहाँ पे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस जो इंडियन हो, ज्यादातर इंडियन है, मगर जो यू नो गिने चुने लाइक मैं आई एम द ओनली फीमेल पाकिस्तानी कॉमेडियन, वो जो है उसके बारे में नहीं बताते जो जो स्ट्रगल जो होता है हमारी यंग जनरेशन का, कि आप पाकिस्तानी, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप ये डॉक्टर बने या आप इंजीनियर बने और अब सर्टन उम्र में जाके शादी कर लें. मगर जो यंग जनरेशन है उनकी उनकी मेंटालिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट राइट. वो चाहते हैं कि यू नो वो क्रिएटिव चीजें करें, जैसे मुझे ही देख लें, आई एम अ ह्यूज एग्जांपल राइट. मुझे नहीं बनना था डॉक्टर, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे छोटी उम्र में शादी नहीं करनी. आई वॉन्टेड टू बी यू नो मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं अपना स्टैंड अप कॉमेडी और अपना करियर परस्यू करूँ, क्रिएटिव बनूँ. तो उस चीज की जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना वो ज्यादा यू नो आई डोंट थिंक कोई ज्यादा बताता नहीं उसके बारे में, तो कोई आपकी स्टोरीज नहीं बताएगा, यू हैव टू टेल योर स्टोरी.
तो मोना आपको सोशल मीडिया पे हम खासतौर पे या इवन आपके जो प्रोग्राम्स के अंदर इंट्रोडक्शन होता है उसमें हम आपको पाकिस्तानी नाटी गर्ल के नाम से भी इंट्रोड्यूस होता हुआ देखते हैं. अगर हम आपसे कहें कि हमें अपनी कुछ पंच लाइन्स शेयर करें तो आपके लिए फौरी तौर पर पॉसिबल होगा? कुछ जेहन में होंगी आपकी चीजें?
हाँ जहन में तो काफी चीजें हैं, मगर आप मुझे आपने मुझे नाटी गर्ल बोला है या नॉटी गर्ल बोला है?
हाँ हाँ ये ये मैंने आपको बताया था, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन एप्पल मीन सेब.
मेरा जी कॉमेडी नॉटी मुस्लिम कॉमेडियन,
नॉटी मुस्लिम कॉमेडियन.
हाँ
तो ये मुस्लिम का टैग क्यों जरूरी था?
मुस्लिम का टैग इसी जरूरत है क्योंकि आप देखें किस वक्त में हम रह रहे हैं. Look at the times we're living in. कि यहाँ पर आप हम अमेरिका में रह रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं मुसलमानों को,
लेकिन सपोर्ट भी करते हैं ना, जैसे मुस्लिम कॉमेडियन, नाटी मुस्लिम कॉमेडियन फीमेल, तो नेचुरली आप जो है ना उसके अंदर न्यूज सेंस बहुत बढ़ जाती है.
हाँ न्यूज सेंस बढ़ जाती है, it just adds another flavor to it.
सही.
क्योंकि लोग सोचते हैं ना मुस्लिम कॉमेडियन कहते हैं अरे यार ये तो बहुत सीरियस हो जाएगा, ये तो पॉलिटिकल खाली चीजों के बारे में बात करेंगे, एंड आई डोंट वांट टू राइट.
मोना वी हैव फ्यू सेकंड, फ्यू मिनट, अब अगर मैं ये कहूँ कि 30-35 सेकंड के अंदर आप हमें कोई अपना किसी प्ले में से, किसी अपने डायलॉग में से 30 सेकंड के अंदर जो हमारी ऑडियंस के साथ कंपेटेबल भी हो कुछ आप हमें सुना सकती हैं?
हाँ जरूर सुना सकती हूँ. इंग्लिश में बोलूँ कि उर्दू में बोलूँ?
जो आपके लिए आसान हो.
अच्छा जी,
बस मैं आपकी उर्दू से इंप्रेस हुआ.
अच्छा उर्दू में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ क्योंकि मैं कॉमेडी इंग्लिश में करती हूँ. सो हियर वी गो. क्या कहते हैं, यू नो नाउ देयर इज अ होल ट्रेंड नाउ विद व्हाइट गाइज ग्रोइंग देयर बियर्ड्स, दे कॉल देम हिपस्टर्स, दे यू नो दे हैव देयर ओन कंट्री इन न्यूयॉर्क, इट्स कॉल्ड विलियम्सबर्ग. You know what they call brown guys with beards? Randomly selected at the airport. that's what they call. I love the fact that बिल्कुल quiet हो गया. मैंने joke सुनाया कि मैं किसी की मैयत पे आई हूँ, मुझे पता नहीं है इस वक्त.
ये मुझे भी honestly नहीं समझ आया मेरी audience को.
आज ही आप जब यहाँ पे ना लंबी beards जाके कहते हैं अगर आप पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान हो,
एयरपोर्ट पे आपको रैंडमली सेलेक्ट करते हैं. सही. मेरे जो प्रोड्यूसर है ना फॉर्चुनेटली आपकी मुलाकात कराऊंगा मैं जल्द, मे बी किसी शो में, मे बी हम फ्यूचर में कुछ और भी प्लान कर सकते हैं आपके साथ कंप्लीट वेंचर. लेकिन मुझे बहुत क्विकली आपसे इजाजत चाहनी होगी. आपके शुक्रिया के साथ थैंक यू सो मच आपने ज्वाइन किया, आपसे बात रहेगी. और सामीन इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम जहां रंग अपने अख्ताम को पहुंचता है, असद हसन को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.